आदित्य सयन के व्रत की कथा। भीष्म जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, जो अभ्यास न होने के कारण अथवा रोगवश उपवास करने में असमर्थ है किंतु उपवास या व्रत का फल चाहते हैं, उसके लिए कौन सा व्रत उत्तम है, कृपया बताएं। प्लत्स्य जी ने कहा, हे राजन, जो लोग उपवास करने में असमर्थ है उनके लिए वही व्रत अभिष्ट है जिसमें दिन भर उपवास करके रात्रि को भोजन का विधान हो। मैं ऐसे महान व्रत का परिचय देता हूँ, सुनो। उस व्रत का नाम है आदित्य शयन व्रत। उसमें विधिपूर्वक भगवान शंकर जी की पूजा की जाती है। पुराणों के ज्ञाता महर्षि जिन नक्षत्रों के योग में इस व्रत का उपदेश करते हैं उन्हें बताता हूँ। जब सप्तमी तिथि को हस्त नक्षत्र के साथ रविवार हो अथवा सूर्य की संक्रांति हो, वह तिथि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली होती है। उस दिन सूर्य के नामों से भगवती पार्वती और महादेव जी की पूजा करनी चाहिए। सूर्यदेव की प्रतिमा तथा शिवलिंग का भी भक्तिपूर्वक पूजन करना उचित है। हस्त नक्षत्र में सूर्याय नमः का उच्चारण करके सूर्यदेव के चरणों की, चित्रा नक्षत्र में अर्काय नमः कहकर उनके गुल्फों गुठियों की, स्वाति नक्षत्र में पुरुषोत्तमाय नमः से पिंडलियों की, विशाखा में धात्रे नमः से घुटनों की तथा अनुराधा में सहस्त्र भानवे नमः से दोनों झांगों की पूजा करनी चाहिए। ज्येष्ठ नक्षत्र में अनंगाय नमः से गुह्य प्रदेश की, मूल में इंद्राय नमः और भीमाय नमः से कटिभाग की, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा में त्वष्ट्रे नमः और सप्तरंगमाय नमः से नाभि की, श्रवण में तीक्ष्णासवे नमः से उदर की, कनिष्ठा में विकर्तनाय नमः से दोनों बगलों की और षद्भिषा नक्षत्र में ध्वंतविनाशाय नमः से सूर्य के वक्ष स्थल की पूजा करनी चाहिए। पूर्वा और उत्तरा भाद्रपद में चंडकाराय नमः से दोनों भुजाओं को, रेवती में समानमधीशाय नमः से दोनों हाथों की, अश्विनी में सप्ताश्वधुरंधराय नमः से नखों की और भरणी में दिवाकराय नमः से भगवान सूर्य के कंठ की पूजा करनी चाहिए। कृतिका नक्षत्र में ग्रीवा की, रोहिणी में ओठों की, मृगशिरा में जिह्वा की, आद्रा में हरये नमः से सूर्यदेव के दांतों की अर्चना करनी चाहिए। पुनर्वसु में सवित्रे नमः से शंकर जी की नासिका की, पुष्य में अम्भोरुह वल्लभाय नमः से ललाट की तथा वेद शरीर धारिणे नमः से बालों की, आश्लेषा में विबुध प्रियाय नमः से मस्तक की, मघा में दोनों कानों की, पूर्वा फाल्गुनी में गौ ब्राह्मण नंदनाय नमः से शंभु के संपूर्ण अंगों का तथा उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में विश्वेश्वराय नमः से उनकी दोनों भौहों का पूजन करें। पाश, अंकुश, कमल, त्रिशूल, कपाल, सर्प, चंद्रमा तथा धनुष धारण करने वाले महादेव जी को नमस्कार है। पाशांकुश पद्मशूलकपाल सर्पेन्दुधनुर्धराय नमः। गयासुरानंग पुरांदकादि विनाश मूलाय नमः शिवाय। गयासुर, कामदेव, त्रिपुर और अंधकासुर आदि के विनाश के मूल का कारण भगवान श्री शिव को मेरा प्रणाम है, इत्यादि वाक्यों का उच्चारण करके प्रत्येक अंग की पूजा करने के पश्चात विश्वेश्वराय नमः से भगवान के मस्तक का पूजन करना चाहिए। तदंतर अन्न भोजन करना उचित है। भोजन में तेल और खारे नमक का संपर्क नहीं रहना चाहिए। मांस और उच्छिष्ट अन्न का तो कदापि सेवन न करें। हे राजन, इस प्रकार रात्रि में शुद्ध भोजन करके पुनर्वसु नक्षत्र में दान करना चाहिए। किसी बर्तन में एक सेर अगहनी का चावल, गुलरकी की लकड़ी का पात्र तथा धूप रखकर सुवर्ण के साथ उसे ब्राह्मण को दान करें। सातवें दिन पारण में और दिनों की अपेक्षा एक जोड़ा वस्त्र अधिक दान करना चाहिए। चौदहवें दिन के पारण में गुड़, खीर और धूप आदि का के द्वारा ब्राह्मण का को भक्तिभाव पूर्वक भोजन कराएं। तदंतर कर्णी का सहित सोने का अष्टदल कमल बनाएं, जो 8 अंगुल का हो तथा जिसमें पद्म रागमणि नीलम की पत्तियां अंकित की गई हो। फिर सुंदर शैया तैयार करें, जिस पर सुंदर बिछौने बिछाकर तकिया रखा गया हो और ऊपर से चंदोवा तना हो। शैया में ऊपर पंखा रखा गया हो, उसके आसपास खड़ाव, जूता, छत्र, चंवर, आसन और दर्पण रखे गए हो। फल, वस्त्र, चंदन और आभूषणों से यह शैया सुशोभित होनी चाहिए। ऊपर बताए हुए सोने के कमल को उस शैया पर रख दें। इसके बाद मंत्रोच्चारण पूर्वक दूध देने वाली अत्यंत सीधी कपिला गौ का दान करें। वह गौ उत्तम गुणों से संपन्न, वस्त्राभूषणों से सुशोभित तथा बछड़े सहित होनी चाहिए। उसके खूर चांदी से और सिंह सोने से मढ़े हुए होने चाहिए तथा उसके साथ कांसी की दोहनी भी होनी चाहिए। दिन के पूर्व भाग में ही दान करना उचित है। समय का उल्लंघन कदापि नहीं करना चाहिए। संज्ञा दान के पश्चात इस प्रकार की प्रार्थना करें। हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपकी सैया, कांति, ध्रुति, श्री और पुष्टि कभी सुनी नहीं होती, वैसे ही मेरी भी वृद्धि हो। वेदों के विद्वान आपके सिवा और किसी को निष्पाप नहीं जानते, इसलिए आप संपूर्ण दुखों से भरे हुए संसार सागर में मेरा उद्धार कीजिए। इसके पश्चात भगवान की प्रदक्षिणा करके उन्हें प्रणाम करके अनंतर विसर्जन करें। सैया और गौ आदि को ब्राह्मणों के घर पहुंचा दें। भगवान शंकर के इस व्रत की चर्चा दुराचारी और दंभी पुरुष के सामने कभी नहीं करनी चाहिए। जो गौ ब्राह्मण, देवता, अतिथि और धार्मिक पुरुषों की विशेष रूप से निंदा करता है, उसके सामने भी इसको प्रकट न करें। भगवान के भक्त और जितेंद्रिय पुरुष के समक्ष ही यह आनंददायी एवं कल्याणमय गूढ़ रहस्य प्रकाशित करने को योग्य है। वेदवत्ता पुरुषों का कहना है कि यह व्रत महापाप की मनुष्यों को के भी पाप नाश कर देता है। जो पुरुष इस व्रत का अनुष्ठान करता है, उसका बंधु, पुत्र, धन और स्त्री से कभी वियोग नहीं होता तथा वह देवताओं को आनंद बढ़ाने वाला होता है। इस प्रकार जो नारी भक्तिपूर्वक इस व्रत का पालन करती है, उसे कभी रोग, दुख और मोह का शिकार नहीं होना पड़ता। प्राचीन काल में महर्षि वशिष्ठ, अर्जुन, कुबेर तथा इंद्र ने इस व्रत का आचरण किया था। इस व्रत के कीर्तन मात्र से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो पुरुष इस आदित्य शयन नाम के व्रत के महात्म्य अथवा विधि का पाठ या श्रवण करता है, वह इंद्र का प्रियतम होता है तथा जो व्रत का अनुष्ठान करता है, वह नरक में पड़े हुए समस्त पितरों को स्वर्ग में पहुंचा देता है।